पहले नाकाम होकर दिखाओ। स्टार्टअप की दुनिया का अजीब दस्तूर है। यहाँ एक कंपनी सफल होती है तो कई असफल। निवेशकों से मिले पैसों को संभल कर खर्च करना चाहिए। फिजूल की क्रोध के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं होता। ऐसे न जाने कितने सबक ये आने वाली कंपनियों के लिए छोड़ गई हैं। प्रेम त्रिपाठी की रिपोर्ट। इसे आप सुन रहे हैं पूनम विश्व नेगी की आवाज में। स्टार्टअप यानी कारोबारी मौका भांप कर काबिलियत के दम पर परवाज भरने का हौसला। इस हौसले को सही वक्त पर पूंजी और तजुर्बे का सहारा मिल जाए तो उड़ान ऊंची हो जाती है। कई बार ये तालमेल नहीं बन पाता, कदम लड़खड़ा जाते हैं। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आंखें खोलती हैं, लेकिन ज्यादातर का सफर जल्द खत्म हो जाता है। हर नाकाम कदम अगली कामयाबी के सबक भी दे जाता है। यहाँ हम बात बता रहे हैं उन 5 स्टार्टअप्स के बारे में जिनका आगाज शानदार था लेकिन अंजाम अच्छा नहीं रहा। पहले पांव जमाएं, फिर प्रयोग करें। IIT से पढ़कर निकले हर्षवर्धन मंदाद ने शिखर पालीवाल, गौरव चौधरी, तनुज खंडेलवाल और सौरभ गोयल के साथ 2014 में मुंबई में टाइनी आउल शुरू की। इन्वेस्टर्स ने इसमें 152 करोड़ रुपए लगाए। शुरुआत अच्छी हुई। इस फूड स्टार्टअप को रोज करीब 2500 फूड ऑर्डर मिल रहे थे। टाइनी आउल का लक्ष्य था कि लोगों को खाने की सही समय पर डिलीवरी करना, लेकिन वो दूसरे प्रयोगों में उलझकर लक्ष्य से भटक गई। इसने अपने मोबाइल ऐप में डिश बेस्ड एग्रीगेशन फीचर लॉन्च किया। ऐप ओपन करते ही यूजर्स को पता चलता था कि आज की बेहतरीन डिश क्या है। रिपोर्टों के मुताबिक इस पर हालांकि खास रिसर्च नहीं की गई थी कि लोग इस प्रयोग को पसंद करेंगे या नहीं। कर्मचारियों की एक बड़ी टीम इसे कामयाब बनाने में झोंक दी गई, लेकिन मुश्किल से रोज के 3 ऑर्डर मिल पाए। बाकी काम के लिए पहले ही भर्तियां की जा चुकी थीं। खर्च बढ़ा तो कंपनी ने 300 लोगों की छंटनी कर दी। मुकाबले में बने रहने के लिए डिस्काउंट देना शुरू किया, लेकिन इससे वफादार कस्टमर नहीं मिले। फिर एक और प्रयोग हुआ। कंपनी ने एरिया आधारित सेवाएं शुरू की। मसलन एक जगह से रोटी ऑर्डर करो, दूसरी जगह से सब्जी और तीसरी जगह से कुछ और। टाइनी आउल ने सभी चीजें एक साथ वक्त पर पहुंचाने का वादा किया, लेकिन ये प्रयोग खर्चीला तो रहा ही, फ्लॉप भी हो गया। रोज बमुश्किल उसे 1000 ऑर्डर ही मिल रहे थे। उसी वक्त जोमेटो को रोज करीब 13000 ऑर्डर मिल रहे थे। टाइनी आउल को ज्यादातर ऑफिस बंद करने पड़े। इसके बाद भी मुंबई बेंगलुरु में बचे कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल हो गया। इन्वेस्टर्स पीछे हट गए। कंपनी को कोई खरीदार तक नहीं मिला। हालत यहां तक बिगड़ गए कि 22 से 24 साल के युवा मालिकों को कर्मचारियों ने बंधक भी बनाया। 2016 में टाइनी आउल इतिहास में दफन हो गई। बड़ा बनने की रणनीति जरूरी। 2005 में योगेंद्र वासुपाल ने जब स्टेज जिला को शुरू किया तब इसका नाम इनासरा टेक्नोलॉजीज था। योगेंद्र इसे हर शहर और जिले तक पहुंचाना चाहते थे, लिहाजा 2010 में उन्होंने इनासरा का नाम स्टेज जिला कर दिया। स्टेज जिला के पास 1100 शहरों में ठहरने के 15000 से ज्यादा विकल्प थे। उस वक्त तक लोग शहर में पहुंचने के बाद होटल बुकिंग के तरीके पर ज्यादा भरोसा करते थे। इंटरनेट की पहुंच भी कम थी। होटलों की ऑनलाइन बुकिंग का कॉन्सेप्ट तब नया था। स्टेजिला की चुनौती लोगों को ऑनलाइन बुकिंग के लिए प्रेरित करने की थी ही, साथ ही दूसरी कंपनियों के भी मैदान में होने से उस पर डिस्काउंट देने का दबाव बढ़ा। कंपनी ने 2015 में मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उसी साल 2 करोड़ डॉलर इन्वेस्टर्स से जुटाए। कंपनी 1200 शहरों में रुकने के 25000 ऑप्शन तैयार कर चुकी थी। वो 8000 लोकेशंस में रुकने के 50000 ठिकानों का लक्ष्य लेकर बढ़ रही थी। 2016 में स्टेजिला ने ट्विटर के पूर्व इंडिया डायरेक्टर को साथ जोड़ा। फिर से 1.35 करोड़ डॉलर जुटाए, लेकिन एक साल में वो पैसा भी खत्म हो गया। उसी बीच योगेंद्र वासुपाल के अरेस्ट किए जाने की खबर आई। फिर एड एजेंसी के साथ पेमेंट का विवाद कोर्ट तक गया। वासुपाल के अरेस्ट होने से कंपनी की साख प्रभावित हुई। स्टेज जिला से जुड़े लोग वासुपाल का साथ छोड़ते गए। 2017 में कंपनी ने कामकाज बंद कर दिया और एक नए मॉडल के साथ वापसी की बात कही, जो आज तक नहीं हो सकी। निश्चिंतता ठीक नहीं, इमरजेंसी प्लानिंग अहम। स्टार्टअप्स की असफलता में एक वजह ये सोच भी होती है कि पैसा आ गया है तो अब कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। विनीत सिंह ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो वक्त के ऐसे ही फेर में फंस जाएंगे। 2015 में उन्होंने अपने 15 साल पुराने दोस्त स्वप्निल त्रिपाठी के साथ मिलकर बिल्डजार को शुरू किया। दरअसल विनीत दिल्ली में अपना घर बनवा रहे थे और उन्हें एक भी ऐसी वेबसाइट नहीं मिली जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचती हो। विनीत 99 एकड़ कंपनी से जुड़े थे, एक्सपीरियंस भी था और पहुंच भी। डालमिया सीमेंट के एमडी पुनीत डालमिया से मुलाकात के बाद विनीत ने बिल्डजार को मैदान में उतार दिया। वो होम कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन से जुड़ा हर मटेरियल बेचने लगे, लेबर सर्विस भी दे रहे थे। कंपनी ने तेजी से ग्रोथ पकड़ी। 8 लाख रुपए महीने से ऑर्डर शुरू होते होते 1 करोड़ महीने से ज्यादा तक पहुंच गए। कंपनी ने पहले 4 महीनों में 5 करोड़ की सेल की। सभी ट्रांजैक्शन 100% एडवांस पेमेंट पर होते थे। बिल्डजार के पास 275 यूनिक कस्टमर्स थे। इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट भी बेचे जाने लगे, लेकिन 2016 में नोटबंदी से रियल एस्टेट सेक्टर को जबरदस्त धक्का लगा। इस सेक्टर में ज्यादातर पेमेंट कैश में होता था, जो बंद हो गया। बिल्डजार की सेल गिरती गई, आखिरकार उसे बंद करना पड़ा। भरोसा जरूरी लेकिन विकल्प भी हो। कई बार भरोसा इतना बढ़ जाता है कि जब टूटता है तो संभलने का मौका नहीं देता। स्टार्टअप्स में ये भरोसा मालिक और इन्वेस्टर्स के बीच होता है। स्मार्ट स्टार्टअप को विकल्प रखने चाहिए। के वैथीश्वरन से यही गलती हुई। देश की शुरुआती ई कॉमर्स कंपनियों में से एक fabmall.com को वैथीश्वरन ने तो 1999 में शुरू किया था। वैथीश्वरन का बिजनेस छोटा लेकिन कामयाब था। 2008 की आर्थिक मंदी भी fabmall.com को नहीं हिला पाई। वो कामयाब होकर इंडिया प्लाजा में बदल गई। मार्च 2011 में कंपनी की वैल्यू 14 करोड़ रुपए थी। इंडिया प्लाजा की वेबसाइट से किताबें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेचे जाते थे। ये वक्त था जब फ्लिपकार्ट और स्नैपडील भी तेजी से बढ़ रही थी। वैथीश्वरन ने अप्रैल 2011 में 25 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स से जुटाए। पैसा वेबसाइट अपग्रेड करने और मार्केटिंग में लगाया। एक माइक्रोसाइट भी लॉन्च की जहां टेक प्रोडक्ट मिलते थे। कभी 30 तक सीमित रहा स्टाफ भी बढ़कर 130 हो गया और बिक्री 38.4 करोड़ रुपए तक हो गई। लेकिन इतनी सेल के बावजूद मुनाफा कम ही रहा, क्योंकि प्रोडक्ट्स पर मार्जिन कम था और कंपनी की कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी थी। वैथीश्वरन को और फंड चाहिए था। 2012 में वो फंड के लिए 30 से ज्यादा इन्वेस्टर्स से मिले, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। वैथीश्वरन ने सैलरी लेना बंद कर दिया, लेकिन इतना काफी नहीं था। अगस्त 2013 में इंडिया प्लाजा बंद हो गई। 14 साल संघर्ष करके भी वैथीश्वरन रेस में पिछड़ गए। वैथीश्वरन ने अपने अनुभव को किताब की शक्ल में फेलिंग टू सक्सीड द स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी के नाम से साझा किया है। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। कारोबार में साख का मामला अहम होता है। साख गई कारोबार गया। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में 2013 में एक स्टार्टअप जूसीरो की शुरुआत हुई। कंपनी जूस निकालने वाली ऐसी मशीन बेचने जा रही थी जो वाईफाई से चलती। ऐलान के 3 साल बाद वो मशीन लॉन्च हो गई। कीमत रखी गई $700, आज के हिसाब से 50,000 रुपए से भी ज्यादा। जिन्होंने भी मशीन खरीदी उनके सामने एक मुश्किल आई। कंपनी ने कहा कि लोगों को जिस फल या सब्जी का जूस पीना है उसके पैकेट भी उससे ही खरीदने होंगे। दावा किया कि मशीन उन्हीं फल सब्जियों का जूस बेहतर तरीके से निकाल पाएगी जो कंपनी की पैकिंग में आएंगी। इसके लिए सब्सक्रिप्शन शुरू किया गया। लोगों ने इसे पसंद किया क्योंकि जूसीरो सब कुछ फ्रेश मिलने का दावा कर रही थी, लेकिन एक खुलासे ने सब खत्म कर दिया। ब्लूमबर्ग ने बताया कि मशीन जितना जूस निकालती है उससे ज्यादा और बेहतर तो उन फलों को हाथ से दबाकर निकल जाएगा। ये सच भी था। मशीन में कोई ऐसी खासियत नहीं थी कि उसके लिए $700 चुकाए जाएं। ये जानकर इन्वेस्टर भी हैरान रह गए। कंपनी ने मशीन सस्ती कर दी, लेकिन वो साख खो चुकी थी। जूसीरो को बंद करना पड़ा। उसे सिलिकॉन वैली के सबसे मूर्ख स्टार्टअप्स में गिना जाता है।